ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भुगतानी शेष परियोजना के तहत दायित्वों के निर्वाहन के लिए भुगतानी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अर्थ मंत्रालय को सरकार द्वारा मंजूरी। देश अंधकार युग से उजाले के युग में प्रवेश कर चुका है, इसलिए युवाओं को निराश नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। डिजिटल प्रविधि के माध्यम से सार्वजनिक सेवा को कागज रहित बनाने के लिए ई गवर्नेंस ब्लू प्रिंट सार्वजनिक। और रूस, अमेरिका और चीन को अपने रक्षा बजट में आधी कटौती करने के अमेरिका के सुझाव को रूस का समर्थन। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने बकाया भुगतान के लिए बचे हुए परियोजनाओं और कार्यक्रमों के दायित्वों का भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए अर्थ मंत्रालय को मंजूरी देने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की सोमवार को हुई बैठक में आर्थिक वर्ष 2080-81 के लिए स्वीकृत कार्यक्रमों और बजट में शामिल तथा उसी आर्थिक वर्ष में पूर्ण हुए परियोजनाओं के बकाया भुगतान की व्यवस्था करने के लिए अर्थ मंत्रालय को मंजूरी दी गई है। बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए आज सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि पूर्ण हुए परियोजनाओं का भुगतान बकाया रहने से पूंजीगत व्यय में कमी की समस्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए भुगतान की व्यवस्था करने के लिए अर्थ मंत्रालय को मंजूरी दी गई है। बैठक में 2080 बैशाख एक गति के बाद मानसून से संबंधित आपदा में लापता हुए व्यक्तियों के परिवारों को लापता व्यक्ति के कम 10 दिन तक न मिलने की स्थिति की पुष्टि करने के बाद संबंधित जिला आपदा प्रबंधन कोष के माध्यम से मृतक राहत उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा बैठक ने 2081 फाल्गुन 18 से 22 के बीच भारत में होने वाले पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के विकास से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पेयजल मंत्री को मंजूरी देने का निर्णय किया गया है। बैठक में झापा जिले के गौरादह नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 और 5 के अंतर्गत आने वाली भूमि से संबंधित पहले संशोधन आदेश 2081 को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही सरकार ने मोरंग के पथरी शनिश्चर्य नगरपालिका को प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए उसी नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 में स्थित राष्ट्रीय वन की भूमि का उपयोग करने की मंजूरी दी गई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग द्वारा प्रस्तुत आम संचार परिषद विधेयक 2081 के प्रस्ताव को सभा ने स्वीकृत किया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने आम संचार परिषद विधेयक पर सामान्य चर्चा के दौरान उठे मुद्दों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक संचार क्षेत्र की गरिमा और विश्वसनीयता को बढ़ाने तथा प्रेस काउंसिल को और अधिक प्रभावी बनाने पर केन्द्रित है। संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि आम संचार के माध्यमों को समय के अनुकूल स्वच्छ, स्वतंत्र, मर्यादित और जवाबदेह बनाने तथा पत्रकारिता के विकास और स्वनियम को बढ़ावा देने के लिए ये विधेयक लाया गया है। इसके अलावा आज की बैठक में नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2081 और नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2081 भी प्रस्तुत किए गए। सभा की आज की बैठक में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री प्रसाद पांडे ने नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2081 और नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2081 प्रस्तुत किए। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले सभी यात्रियों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था करने के लिए सरकार से मांग की। सांसदों ने यह भी कहा कि स्थानीय तह पर प्रमुख प्रशासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को न भेजे जाने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा पाथीभरा में केवल कार निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए स्थानीय जनता के साथ समन्वय कर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में सांसदों ने निर्वाचन क्षेत्र में रणनीतिक सड़क निर्माण के काम को प्रभावी बनाने, पर्यटन क्षेत्र के पूर्वाधार विकास, नेपाल के खेल क्षेत्र के पूर्वाधार विकास जैसे विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही सांसदों ने भंसार नाका, सिंहदरबार के सरकारी कार्यालयों और देशभर की पुलिस चौकियों पर बेवारिस अवस्था में रखी गई गाड़ियों को प्रक्रिया पूरी करके व्यवस्थित करने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक फाल्गुन 21 को बुधवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 में भाग लेने के लिए नेपाल आए भारत, भूटान और मालदीव के राष्ट्रीय कैंडेट कोर के प्रतिनिधिमंडल ने आज शिष्टाचार भेंट की। महाशिवरात्रि और नेपाली सेना के 262 विस्थापना दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित होने वाले युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने आए इन देशों के प्रतिनिधिमंडल ने शीतल निवास में राष्ट्रपति से मुलाकात की। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश अंधकार युग से उजाले के युग में प्रवेश कर चुका है, इसलिए युवाओं को निराश नहीं होना चाहिए। काठमांडू के जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कॉलेज और शिक्षण अस्पताल के रजत जयंती समारोह के अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ओली ने स्पष्ट किया कि देश के निर्माण के मामले में सरकार बिना सोचे समझे काम नहीं कर रही है, बल्कि विचार विमर्श के बाद ही कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जनता से भी इस यात्रा में साथ देने और सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ओली ने अस्पताल की रजत जयंती स्मारिका का विमोचन भी किया। ये कार्यक्रम नेपाल मेडिकल कॉलेज और शिक्षण अस्पताल के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय द्वारा वितरित की जाने वाली विभिन्न विषयों की छात्रवृत्ति के लिए कुछ सीटें खाली रहने के कारण आवेदन करने का आह्वान किया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक सीटों की संख्या पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए प्रधानमंत्री ओली ने सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदन करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि खाली पड़ी सीटों के लिए छात्रवृत्ति हेतु जल्द से जल्द आवेदन करने के लिए संबंधित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस संदेश को व्यापक रूप से फैलाने का आग्रह किया, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस अवसर का लाभ उठा सके। ये छात्रवृत्ति योजना शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या में पशुपतिनाथ मंदिर में आने वाले साधु संतों एवं अन्य दर्शनार्थियों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। पिछले दशक में सर्वाधिक भक्तजनों के आने की अपेक्षा के साथ पशुपति क्षेत्र विकास कोष ने समग्र प्रबंध किया है। बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व को हर्षोल्लास के साथ संपन्न करने के लिए संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषद के अध्यक्ष बद्री प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्थापन मूल समारोह समिति गठित की गई है। कोष के सदस्य सचिव डॉ मिलन कुमार थापा से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल के साथ साथ भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार लगायत देशों से भक्तजन आ रहे हैं। व्यवस्थित रूप में दर्शन और पूजा की जा सके, इसलिए कल सुबह 2 बजे से ही पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। पशुपति मंदिर आसपास के क्षेत्र में निशुल्क आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा आदि की व्यवस्था की गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि माओवादी केन्द्र जनता की ताकत से स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में उनकी पार्टी के पक्ष में जनमत बढ़ रहा है। जनता के साथ माओवादी तराई मधेस जागरण अभियान के तहत मोरंग के कानेपोखरी गांव पालिका के रमाइलो बाजार में आयोजित खबरदारी सभा और दूसरे गांव सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष दहाल ने कहा कि हाल के दिनों में माओवादी केंद्र के एजेंडा के प्रति जनता का आकर्षण बढ़ा है। सार्वजनिक सेवा को कागज रहित और चुस्त बनाने के लिए ई गवर्नेंस ब्लूप्रिंट सार्वजनिक किया गया है। भौतिक उपस्थित के बिना ही तकनीक के माध्यम से शासकीय मामले में रूपांतरकारी परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय अंतर्गत के ई गवर्नेंस बोर्ड ने आज ई गवर्नेंस ब्लूप्रिंट साझा किया है। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री यामलाल कड़ेर और सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट के बीच आज मुख्यमंत्री कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में नेपाल टेलीविजन कर्णाली ब्यूरो कार्यालय के संचालन के लिए प्रदेश सरकार और सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री कड़ेर ने कहा कि नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल के साथ पहले से ही सहयोग जारी है और एकीकृत रूप में स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल की अवधारणा के अनुरूप आने वाले दिनों में भी प्रदेश सरकार सहयोग और सहकार्य के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्णाली प्रदेश में नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल की सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। कार्यकारी अध्यक्ष डॉ विष्ट ने बैठक के दौरान कहा कि समयानुकूल आधुनिक प्रविधि का उपयोग करते हुए रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के प्रसारण को जनता केंद्रित बनाया जा रहा है। उन्होंने आज ही नेपाल टेलीविजन कर्णाली ब्यूरो कार्यालय के स्टूडियो और रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय सुर्खेत का निरीक्षण और अनुगमन किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस, अमेरिका और चीन को अपने रक्षा बजट में आधी कटौती करने के अमेरिका के सुझाव को रूस का समर्थन मिला है। ये सुझाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव के माध्यम से वैश्विक स्तर पर हथियारों की होड़ को कम करने और संसाधनों को विकास और अन्य जरूरी क्षेत्रों में लगाने का आह्वान किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भुगतानी शेष परियोजनाओं के तहत दायित्वों के निर्वहन के लिए भुगतानी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अर्थ मंत्रालय को सरकार द्वारा मंजूरी। देश अंधकार युग से उजाले के युग में प्रवेश कर चुका है, इसलिए युवाओं को निराश नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। डिजिटल प्रविधि के माध्यम से सार्वजनिक सेवा को कागज रहित बनाने के लिए ई गवर्नेंस ब्लू प्रिंट सार्वजनिक। और रूस, अमेरिका और चीन को अपने रक्षा बजट में आधी कटौती करने के अमेरिका के सुझाव को रूस का समर्थन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।